Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dusra mantra chal raha hum logon ka. Lagbhag pura uska bhashya bhi hum log dekh hi liye hain. इसमें कहते हैं पराचा कामान अनुयन्ति बालाहा ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम। जो अल्पज्ञ हैं, छोटी बुद्धि वाले हैं, उन्हें कहते हैं बालाहा। वो बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं, अनुयन्ति। वो आगे आगे दौड़ते हैं, पीछे पीछे उनके दौड़ते रहते हैं, पीछे लगे रहते हैं। और क्या परिणाम होता है? मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम। जो मृत्यु का सर्वत्र फैला हुआ पाश है, पाश्यते बध्यते येन तम पाशम, जिसके द्वारा बांध लिया जाता है, फंसा दिया जाता है, उस विस्तीर्ण व्याप्त पाश में ये बांधा जाता है जीव। अथ धीरा मृतत्वम विदित्वा। और जो धीर है, दूसरी ओर अथ, दूसरी ओर जो विवेकी है, जो धीर है, वह अमृतत्वम विदित्वा, वह अमृतत्व को जानता है। ध्रुव निश्चल जो सत्य है इसके पीछे, उसको जानकर और संसार के अनित्य पदार्थों की इच्छा नहीं करता है। ध्रुवम अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन्ते। जो अध्रुव हैं, चंचल हैं, परिवर्तनशील हैं, उनकी वह इच्छा नहीं करता है। एक और श्रुति है मुंडक, उसमें बोलते हैं कि कामान यह कामयते मन्यमानः स काम भी जायते तत्र तत्र। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। कामान यह कामयते, जो कामनाओं की इच्छा करता रहता है, कामान अर्थात भोगान, कल भी बताया था। यहाँ भी जैसे भोगान अर्थ है कामान अनुयन्ति, अर्थात भोगान अनुयन्ति, बाहर भोग के रूप में है, अंदर काम के रूप में है, तो उसी प्रकार कहते हैं कि कामान यह कामयते, जो भोग की इच्छा करता है और उन्हीं को मानता है, स काम भी, वह काम के कारण वहां वहां जन्म लेता है, जायते तत्र तत्र। और यहां कहते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो जन्म और मृत्यु एक साथ चलते हैं। यह बता रहे हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ चलते हैं। स काम भी जायते तत्र तत्र। और पर्याप्त कामस्य, जो पर्याप्त काम है उसे और कोई कामना नहीं है, वह अपने में आत्मतृप्त है, आत्मतुष्ट है, आत्मकाम है। तो ऐसा जो धीर है, पर्याप्त काम से कृतात्मनः, जो करना चाहिए था वो कर लिया, क्योंकि आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। तो इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, उसके समस्त काम यही प्रविलीन हो जाते हैं। अर्थात कामना उसको अनुयन्ति बालाः, कामना उसको विभिन्न स्थलों में ले जाती है, रूपों में ले जाती है, दौड़ाती है, पर जिसके कामना नहीं है तो वह अब और कहां जाएगा। यही सब काम प्रविलीन हो गए, इसलिए अब और कहां जाएगा, वास्तव में जाना आना भी नहीं होता। आप योग वासिष्ठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही आपका मन दूसरे लोक को बना लेता है। आपको देह दृष्टि से ऐसे लगता है कि हम जाते आते हैं, तो उसी अधिष्ठान आत्म तत्व में यह बना लेता है। तो धीरा जो इस काम के शक्नोति है वह सोढ़ुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम संयुक्ता स सुखी नर। शरीर छूटने के पहले ही ये काम क्रोध के वेग को सह लो। जो सह लेता है वही युक्त है। गीता ने कहा वह युक्त है। तो यहीं पर आप प्रथम जो वेग आता है उसको धैर्यपूर्वक, धीरा धैर्यपूर्वक सह लीजिए, उसके द्वारा विचलित ना हो। तो जो सह लेता है, सहिष्णु होता है, सहन करता है, तो वह धीर होता है, वही आगे बढ़ जाता है। तमेव धीरो विज्ञाय, वहां भी श्रुति ने धीर कहा, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण नानुध्यायात बहुन शब्दान वाचो विगलापनम हितत। उसको, उस परमात्मा को जानकर और उसी में अपनी बुद्धि को नियोजित करें, उसी के साथ उसे ब्याह दे, उसी के साथ नियोजित करें। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाला है वह उसी में रहे। यह नहीं पूछे कि ब्रह्म ज्ञान हो गया आप क्या करना है। आप जानते हैं ना, एक साधक ने पूछा था उड़िया बाबा जी महाराज से कि हमें ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, अब क्या करना है। तो बाबा ने कहा जाके ब्याह कर ले। क्योंकि और श्री महाराज जी उसको ऐसे समझाते थे कि बताओ अभी कर्तव्य विषयक उसका अज्ञान बना ही रहा अभी, तो कहा जो तुम्हारा अज्ञात कर्तव्य है। महाराज जी ने इसका ऐसे उत्तर दिया था, दिल्ली में किसी ने पूछा था कि महाराज आत्मज्ञान तो हो गया, अब यह नहीं पता चल रहा है कि अब करना क्या है। तो महाराज जी ने कहा कि वो जो तुम्हारा अज्ञात कर्तव्य है ना, अब उसके ज्ञान के लिए प्रयत्न करो, अब उसके लिए प्रयत्न करो क्या कर्तव्य है। तो श्रुति कहती है प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण, उसी में उसी सत्य में वह रहे। प्रज्ञां कुर्वीत, और कहा कि बहुत शब्दादि पढ़ के विद्वत्ता और भाषण देंगे, तो कहा कि नहीं वो वाचो विकलापनम उसमें मत लगो, तुम तो इसी तत्व का ही विचार करते रहो, ये बात कही गई। तो कहा ध्रुवम अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन्ते, भक्ति में भी कह देते हैं। मीरा ने कहा कि ऐसे वर को कई वरों जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को क्या मैं वरण करूं जो जन्मता है और मर जाता है। वर मिलिया गोपाल जी मारो चुड़लो अमर है जाए। तो कहा कि जो हमेशा रहने वाला है उस अविनाशी का वरण करो। राम मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। तो जो अविनाशी है उसका वरण करो। ध्रुवम अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन्ते, जो अध्रुव है उसकी उसको नहीं चाहते हैं, जबकि यही आपको ध्रुव अविनाशी वस्तु वह आत्म तत्व प्राप्त है, तो फिर उसके लिए आप क्यों प्रयत्न करते हैं। न प्रार्थयन्ते, उसकी इच्छा नहीं करते हैं। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो जाने से और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं। यद विज्ञानान न किंचित अन्यत प्रार्थयन्ते ब्राह्मणाहा कथम तद अधिगम, उसका फिर बोध किस प्रकार से होता है। तो आगे से हमारे गुरुदेव यहाँ यमराज उसका निरूपण करते हैं, मृत्यु के देवता। तो ये मृत्यु के देवता उस वस्तु का कि आत्मज्ञ को कैसे, आत्मज्ञानी कैसे बुद्धि को विनियोजित करे और सर्वत्र उस तत्व का दर्शन कैसे करे, ये बात बताते हैं। तो कहते हैं येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एते नैव विजानाति कि मत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। तो कहा कि येन के द्वारा उस आत्म तत्व को ही लखाया गया, जिस आत्मा के चैतन्य के द्वारा रूप रस गंध शब्द स्पर्श पांचों ज्ञानेन्द्रियों को और उनके विषयों को ले लिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों को लिया, और मैथुनान और मैथुन जन्य सुख को जानता है, एतेन एव विजानाति, इसी के द्वारा जानता है। तो एतेन एव विजानाति, जिस आत्मा के द्वारा जानता है इस लोक में और क्या रह जाता है, उसके द्वारा जानता है और उसको जान लेने पर और कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता, कि मत्र परिशिष्यते। और वह जो नचिकेता जिस तत्व के विषय में तुमने पूछा था, प्रथम वल्ली में पूछा था, द्वितीय वल्ली में पूछा था, भाष्यकार भगवान कहेंगे आगे भाष्य में, और तृतीय वल्ली में तद विष्णु परमं पदम करके जिसका निरूपण किया गया था, वह है यहाँ तत्। और एतत् क्या है, तो कहा आपकी आत्मा, तो वह तत्व निश्चय यही है। यही है कौन, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध मैथुन आदि को जानता है, वह तत्व यही है। थोड़ा सा दूसरी बात करेंगे, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, एक एक फैशन चला, एक सज्जन हमारे पास आए थे तो बोले उनके दोस्त का बेटा घर छोड़ दिया था, बहुत पुरानी बात है ये बहुत कई वर्ष हो गए, 15-20 वर्ष पहले की बात, 15-16 वर्ष। तो वो हमारे पास आए तो जो जिस बालक ने घर छोड़ दिया था उसके पिताजी थे वो चुप थे, अब पिताजी वो ज्यादा नहीं बोल पाते थे तो अपने दोस्त को लाए थे बात करने के लिए। तो दोस्त जो थे मित्र, उन्होंने कहा कि आपका सत्संग सुन के उस बालक ने घर छोड़ दिया तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हमने कहा हमारे पास तो आया नहीं है, तो कहा कि नहीं, आपको ऐसे लगता है कि आप ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी तो हम हैं, क्योंकि हम अपने अज्ञान को जानते हैं, और जो अपने अज्ञान को जानता है वही ज्ञानी होता है। तो आप क्या अपने अज्ञान को जानते हो? अब वो बात तो ठीक है, अज्ञान को जानो, और उस अज्ञान की हमारे यहाँ जिज्ञासु के जीवन की प्रक्रिया होती है कि वह अपने अज्ञान को जानता है और उस अज्ञान का उसे दर्द होता है, पीड़ा होती है, और वह उससे छूटना चाहता है। लेकिन अज्ञान को जाने वह ज्ञानी, यह अज्ञान को जानना ही ज्ञान है, इस पर कुछ प्रश्न उठ जाता है। जैसे कोई अंधकार को जान ले तो अंधकार को जानने से कहे कि अंधकार की निवृत्ति हो जाती, नहीं होती, अंधकार की निवृत्ति नहीं होती। उसी प्रकार से अज्ञान को जान लेने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। तो आजकल इस प्रकार से एक कुछ परिभाषाएं नवीन नवीन बनाई जाती हैं, क्योंकि प्राचीन जो शास्त्र हैं ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त, वो तो बहुत लोग जानते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, तो हम कुछ नवीन आपको सुनाएं जिसमें आप ज्यादा आकृष्ट हो। अब उसके पीछे कुछ चिंतन ठोस है या नहीं, तो हमारे यहाँ जो वेदांतों में बात है वह कुछ और पारिभाषिक है, और उसको उन्होंने दूसरे आधुनिक विचारकों ने इस प्रकार से गढ़ लिया। तो हमारे यहाँ क्या है कि आशय और विषय के सहित जो अज्ञान को जान लेता है तो उसके अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। आश्रय अज्ञान का जो आश्रय है और अज्ञान का जो विषय है, उन दोनों के, ऐसे कहो कि उन दोनों के ऐक्य को जान लेने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान बिचारा कहीं रहता ही नहीं। तो जिसके बारे में, क्योंकि वास्तव में जिसके बारे में अज्ञान है, जो विषय है अज्ञान का, वही उसका आश्रय भी है। थोड़ी देर को समझो, कहा कि जैसे हम किसी विषय को देखते हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, रूप रस गंध आदि, तो हम किसी रूप को देखते हैं तो उस रूप का आश्रय कौन है, तो कहा कि ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, तो रूप का आश्रय वह है। और हम जो देखने वाले हैं, हमें उस रूप का ज्ञान नहीं था, देखने पर उसका ज्ञान हुआ, तो हम जो देखने वाले हैं, हम आत्मा हैं, चैतन्य हैं, तो हम ज्ञाता हैं, और जिसको हम देखते हैं वह ज्ञेय है। ये इसमें जो आप त्रिपुटी शब्द का प्रयोग करते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ है। क्या छिपा है कि ज्ञान में ही हम पुट बना लेते हैं, एक अखंड, एक अद्वितीय ज्ञान में ही हम पुट बना लेते हैं, और हम पृथक्करण कर लेते हैं कि मैं ज्ञाता और सामने जो वस्तु है वह ज्ञेय, और बीच में ज्ञान, ज्ञान का माध्यम नेत्र आदि। तो ज्ञान के माध्यम नेत्र आदि। एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने प्रश्न पूछा, महाराज जी लोगों से, हम महाराज जी के मुख से सुनी बात है, तो कहा कि ज्ञाता और ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, दृष्टा और दृश्य, तो इसकी विभाजक रेखा क्या है, दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा क्या है, ऐसे प्रश्न पूछा। सब विचार करने लगे तो श्री महाराज जी कहते हैं कि हमने कहा कि दृष्टि, दृष्टा और दृश्य, जैसे ज्ञाता और ज्ञेय में ज्ञान है तो दृष्टा और दृश्य में दृष्टि है, तो दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा क्या है, तो कहा कि दृष्टि है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा अज्ञान है, अज्ञान है, क्योंकि आप कहां से विभाजन करेंगे, कहां तक दृष्टा है और कहां से दृश्य है। यही भगवान शंकराचार्य ने यहां भाष्य में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष इस बात को लेकर उठाया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, उस पर भी विचार करेंगे। तो कहा कि दृष्टा और दृश्य की जो विभाजक रेखा है वह दृष्टि नहीं है, क्योंकि कहां से तुम दृष्टि कहोगे, कहां तक ज्ञाता है और कहां से दृष्टा है, और कहां से दृष्टि बन गई और कहां से दृश्य बन गया। यदि आप नेत्र को कहते हैं तो नेत्र स्वयं दृष्टि है, दृश्य है, यदि दृश्य की दृष्टि से देखोगे तो नेत्र भी दृश्य है, शरीर भी दृश्य है, विषय भी दृश्य है, सब दृश्य है। और यदि दृष्टा की दृष्टि से देखोगे तो दृष्टा ही दृष्टा, दृष्टा ही बुद्धि बनता है, अंतःकरण बनता है, दृष्टा ही नेत्र बनता है, इंद्रिय बनता है, ज्ञानेन्द्रिय बनता है, और दृष्टा ही दृश्य बनता है, क्योंकि यदि दृष्टा चाहे उसको देखे ना देखे तो जिसको वह देखना चाहता है उसको ही देखता है, तो दृष्टा ही दृश्य बनता है। तो संपूर्ण विस्तार दृष्टा का, तो उसमें विभाजन कैसे करेंगे, तो केवल अज्ञान के कारण हम भेद बना रहे हैं, अज्ञान के कारण यह भेद बना रहे हैं। एक सज्जन गए वृंदावन, उन्हीं दिनों की बात है, उसी काल की, वो काल बुद्धि में मत बैठाओ, उससे फिर गड़बड़ होगी। तो एक सज्जन गए वृंदावन, इसलिए हमारे भक्त लोग जो है ना, तो वो क्या करते हैं, वो काल को छोड़ देते हैं, उनके पास भी युक्ति है, ऐसा नहीं समझना, वो भी एक दर्शन है। तो उसमें ऐसे आज कह के बोलते हैं, अब कह के बोलते हैं, आज आज भगवान ने ऐसी लीला की, ऐसा नहीं कि 5000 वर्ष पूर्व की थी। तो अब क्या हुआ कि एक सज्जन गए वृंदावन, जिज्ञासु थे, कहीं दूर से चलते चलते गए और उन्होंने सुना था कि वृंदावन में कुछ तत्वज्ञ महापुरुष रहते हैं और उनसे जिज्ञासा का समाधान होता है। तो वृंदावन पहुंचे, तो एक महात्मा के सत्संग में जाकर बैठे तो महात्मा व्यतिरेक विवेक दृष्टि से समझा रहे थे। तो महात्मा ने कहा कि देखो ये जो विषय है ये अनात्मा है, इनको छोड़ दो। इंद्रियां अनात्मा है, इनको छोड़ दो। मन अनात्मा है, इसको छोड़ दो, अंतर्मुख होते जाओ। और बुद्धि भी दृश्य है, इसको छोड़ दो, और जो तुम दृष्टा हो, आत्मा हो, उसमें आओ। तो उन्होंने पंचकोश का विवेक एक समझाया। तो अन्नमय कोश को छोड़ो, प्राणमय कोश को छोड़ो, मनोमय को छोड़ो, और विज्ञानमय आनंदमय को छोड़कर अपने स्वरूप में बैठ जाओ, समझा रहे थे। इन्होंने सुना, इनको बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद वो दैव योग से सूर्या बाबा जी महाराज के सत्संग में पहुंच गए। तो बाबा ने कहा कि कुछ अनात्मा है ही नहीं, सब आत्मा ही आत्मा है। अन्वय दृष्टि बता दी। तो कहा कि अपनी ही आत्मा प्रतिभासित होने लगती है अंतःकरण के रूप में, और वही चैतन्य इंद्रिय बन जाता है, विषय बन जाता है। तो एक चैतन्य का समस्त पसारा है, उसी का खेल है, तो उसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। ये निरूपम रसम गंधम, तो वही है सब, ये ब्रह्म दृष्टि होती है। तो ये बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले आए तो थे यहाँ समाधान के लिए, और भी प्रश्न उठ गए। अब बात किसकी माने, इनकी माने कि उनकी माने। महाराज जी कहते थे कि तुम एक गुरु के पास जाओगे तो कहेगा आंखें बंद करके ध्यान करो, दूसरे के पास जाओगे तो कहेंगे कि अध खुली आंख से ध्यान करो, तीसरे कहेंगे आंख खुली रखकर ध्यान करो। अब वो उसको शाप किसका लगा, वो तीन गुरु बनाने का शाप लगा। फिर चौथे के पास जाएगा। महाराज जी सुनाते भी थे कि जय कृष्ण मूर्ति का सुन के आए, फिर स्वामी चिन्मयानंद जी का सुन के आए उन दिनों, फिर महाराज जी के पास आए, तीन जन का सुन के गए। फिर महाराज जी से पूछे कि एक कहते हैं सगुण साकार का ध्यान करो, एक कहते हैं सगुण साकार कुछ है ही नहीं, एक कहते हैं निराकार का ध्यान करो, एक कहते हैं ध्यान ही मत करो, किसकी बात माने। तो महाराज जी ने कहा बेटा तुम पहले ही इतने परेशान हो, अब हमसे पूछकर और परेशान हो जाओगे। तो वही बात है। तो वो गए तीसरे महात्मा के पास और बोले कि मैं बहुत सुन के आया था कि वृंदावन में बड़ी तत्व विचार की चर्चा चलती है, तत्व ज्ञान की, तो आया था, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? एक महात्मा के पास गया, उन्होंने ऐसे कहा कि सबको हटा दो, और दूसरे ने कहा कि सब वही है। तो कहा तुम गए किसके पास थे? तो कहा कि एक और कोई महात्मा थे और एक सूर्या बाबा जी महाराज के पास गए थे। अरे कहा वो तो इतना निधिध्यासन किए हैं कि उनकी ब्रह्म दृष्टि एकदम प्रतिष्ठित है, इसलिए तुम उनकी बात को छोड़ो, जो पहले महात्मा ने कहा है पहले उसी को करो, व्यतिरेक दृष्टि को तुम पकड़ो। तो अब यहाँ तो क्या हुआ कि तीन वल्ली तो हो गई। अब चतुर्थ वल्ली में आपको पहले दिन बताया था कि अब जो गुरुदेव हैं वो उसको ब्रह्मता का बोध कराएंगे। एक होता है आत्मज्ञान और एक होता है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्मता का जो बोध होता है वो अद्भुत होता है, उसमें अपने शिष्य को परिच्छिन्न भाव में रहने नहीं देते हैं गुरु, वो रहने ही नहीं देते हैं। श्री महाराज जी हमसे कहते थे कि तुम आगे चलोगे तो हम तुम्हें टोकेंगे, हम कहेंगे तुम आगे क्यों चलते हो, तुम पीछे जाओगी तो हम कहेंगे तुम पीछे क्यों जाते हो, तुम दाहिने जाओगे तो हम कहेंगे तुम दाहिने क्यों जाते हो, तुम बाएं जाओगे तो हम कहेंगे बाएं क्यों जाते हो। ऊपर तो मना करेंगे, नीचे तो मना करेंगे, बाहर तो मना करेंगे, अंदर तो मना करेंगे। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जीना है कि मरना है, ऐसे उनके शब्द थे। फिर कभी कहते थे शिष्य बेचारा क्या करे, मरे। तो वही बात है। तो कहा कि अब उसको कहीं कहीं भी ठहरने नहीं देंगे। गुरुदेव का यह काम होता है कि वो कहीं शिष्य को ठहरने नहीं दे। कहीं ठहरेगा तो फंसेगा, इसलिए कहीं ठहरने नहीं देना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो विज्ञान स्वभाव आत्मा है, ये न विज्ञान स्वभावेन आत्मना, जो ये विज्ञान स्वभाव आत्मा है, तो ये जो विज्ञान स्वभाव आत्मा है इसके द्वारा ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसके कारण से ही ग्रहण होते हैं, इस चैतन्य के कारण से ही ग्रहण होते हैं।